ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी है। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक को पहले ही मंजूर कर चुकी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। ये भी कहा कि ये कानून किसी मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। उन्होंने विधेयक को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि ये पूर्वव्यापी नहीं है और इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है।
ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते।
श्री रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुस्लिमों तथा अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी पेश किया। विपक्ष को जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये विधेयक लाया गया है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये विधेयक संविधान के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी और अन्य मुद्दों पर अपनी विफलता छिपाने के लिए ये विधेयक लाई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने प्रस्तावित कानून को गलत, तर्कहीन और मनमाना करार दिया। लोकसभा में इस समय वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाजपा के अनुराग सिंह ठाकुर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।
टोपी वालों का मैं बताऊंगा, अभी 2017 में जब आपकी सरकार आने से पहले घोटाले कितने थे, एक नहीं अनेक, लेकिन इनके काले कारनामे आज खत्म हो जाएंगे सर। ये विधायक कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट।
आवेदन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 आज राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य आवरजन कानूनों का आधुनिकीकरण करना है। इसमें केंद्र सरकार को पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज, वीजा और पंजीकरण के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। केंद्र ने देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। इससे अनुसूचित जनजाति के करीब 3.5 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अब तक देश भर में कुल 721 विद्यालय मंजूर किए गए हैं। इनमें से 477 विद्यालय संचालित हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश का बौद्धिक पुनर्जागरण है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति वैश्विक स्तर पर शिक्षा और नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त कर रही है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट ने कहा है कि बहुपक्षवाद ही दुनिया के लिए भविष्य का रास्ता है। 53वीं सप्रू हाउस व्याख्यान में चिली और भारत ग्लोबल साउथ में एक साथ विषय पर राष्ट्रपति फोंट ने कहा कि चिली भारत के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करना चाहता है, क्योंकि द्विपक्षीय सहयोग के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है। जादूमणि सिंह मांडिंगम विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 50 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ब्राजील में युवा जादूमणि ने क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले में ब्रिटेन के एलिस रॉबिस को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान के असल बेग जलीलोव से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।